शांति, ओम शांति। हम सभी कहाँ बैठे हैं? बाबा रोज रोज भिन्न भिन्न रूप से समझाते हैं। आज बाबा ने कहा है तुम सभी सत्संग में बैठे हो। हम सब कहाँ बैठे हैं? सत्संग में बैठे हैं। बैठे हैं सभी सत्संग में। भक्ति मार्ग में भी सत्संग होते हैं, पर वहां कोई गुरु कथा सुनाता है या कोई विद्वान पंडित कुछ न कुछ थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें सुनाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सच्चा सत्संग तो यही है, जहां सत बाप सत्य ज्ञान देकर सतयुग की स्थापना करते हैं, वही है सच्चा सत्संग। भक्ति मार्ग में तो सत्संग कहाँ है, क्योंकि और ही कई बातें जो परमात्मा से बेमुख करने वाली है वही सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सत्संग इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो सब रावण के वश है। अब रावण के वश तो क्या होगा, रावण ने सबको श्रापित कर दिया है, तो जो श्रापित ही है रावण से वो सत के संग में कैसे बैठेंगे? सत के संग में वही बैठते हैं जो भगवान द्वारा वरदान प्राप्त करते हैं, और उन वरदानों से ही इतने ऊंचे बनते हैं। वहां तो नीचे गिरते आते हैं, ईश्वर से दूरी होते जाते हैं। तो जब तक बाप ना आए तब तक सत्संग है ही नहीं। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी, सत्संग केवल इसी समय होता है संगम पर, सतयुग की स्थापना करने लिए सत्संग, सत्य का संग। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और ऐसा सत्संग जो अभी बाबा करते हैं, इस सत्संग के बाद फिर और कोई सत्संग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सतयुग आ गया तो सतयुग में कोई सत्संग नहीं करते, आवश्यकता ही नहीं है, सब सदगति में है। आज 4/11/2025 है। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। क्यों वहां सत्संग करने की जरूरत नहीं है सतयुग में? मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? कोई भी विकर्म देवताएं नहीं कर सकते हैं। मनुष्य तो विकर्म ही करते रहते हैं ना, पर देवताएं कभी विकर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उत्तर है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। इस समय सत्य बाप का हमें वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। भगवान वरदान देते हैं सत्य ज्ञान देकर, फिर रावण श्राप देते हैं। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी सदगति सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। ये भी समझने की बात है। विकर्म कब होते हैं? जब द्वापर से रावण द्वारा श्रापित हो जाते हैं, फिर विकर्म करने लगते हैं, इसलिए दुर्गति हो जाती है। ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से औरों को ऐसे बताओ कि परमात्मा कैसे सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है, तो बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो जाता है? कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता है। श्री कृष्ण को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वो तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वो टीचर भी नहीं बन सकता है। अब राजकुमार थोड़ी टीचर बन के पढ़ाएगा, वो टीचर भी नहीं बन सकता। खुद ही बैठ टीचर से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण खुद ही टीचर के पास जाके पढ़ता है। गुरु तो वहां होता ही नहीं है, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की भी वहां दरकार नहीं रहती है। ज्ञान भी वहां चाहिए जहां दुर्गति हो। सदगति में है तो ज्ञान की भी दरकार नहीं वहां, इसलिए ज्ञान की भी दरकार वहां नहीं रहती। नाम भी नहीं है, ये शब्द ज्ञान होगा ही नहीं है। बाबा कहते नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? वो द्वापर में आके क्या करेगा? उसके बाद तो और ही दुर्गति ज्यादा होनी है। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? ये भी किसको ध्यान में नहीं आता। तो एक एक बात में बहुत ही गूढ़ राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम कहा जाता है, अंग्रेजी शब्द है सुप्रीम। सुप्रीम माना परम, और परम शब्द से ऊंचा तो कोई शब्द है ही नहीं। तो अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं। बाबा को कई अंग्रेजी अक्षर बहुत पसंद थे। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस, बाबा कितना प्यार से कहते ओशन। हाँ, ऐसे बाबा प्यार से ये शब्द कहते थे। ये अंग्रेजी शब्द बाबा को बहुत पसंद। जैसे बाबा को कौन सा शब्द पसंद आया? ड्रामा। अब बाबा ड्रामा और नाटक का भी अंतर करते हैं। ड्रामा माना बाबा जिसको ड्रामा कहते हैं उसको कहेंगे फिल्म। तो फिल्म में एक बार रील वो शूट हो गया तो फिर वही बजेगा। नाटक में तो परिवर्तन होता रहता है। एक एक्टर बीमार हो गया तो उसकी जगह दूसरा पार्ट बजाएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा अक्षर है, ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसे कहते भी हैं। हाँ, ये सृष्टि चक्र फिरता है ऐसे कहते भी हैं। परंतु फिर कैसे फिरता है? हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं हाँ चेंज नहीं हो सकती है, इसीलिए कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो बनी बनाई पहले से ही है वो बनती है, कोई नया नहीं बनता। तो कुछ भी। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जरूर कोई खेल है, कोई खेल है, कोई फिल्म है, हाँ, जो कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये भी कोई नहीं जानते। भले कहेंगे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, परंतु अच्छा चलो ये चक्र है तो बाबा पूछते हैं तो कहो कि इसको फिरने में कितना समय लगता है, कैसे रिपीट होता है, हाँ, आयु क्या है। बाबा कहते कोई नहीं जानते। इस्लामी बोधी आदि सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। अब बाबा कहते वो घराने है, ब्राह्मणों का घराना नहीं कहेंगे। घराना जो होता है ना वो अधिकतर फैमिलीज में होता है, उनके वंशज वो घराने बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस्लामी बोधी आदि ये सब एक घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तो ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। तुम्हारा घराना भी नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी राजाई भी नहीं है, तुम्हारा क्या है, कुल। ये कुल है, ये वर्ण है ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, राजाई नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझाना बहुत सहज है। अब सूक्ष्म वतन में क्या होता है, बाबा कहते सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं। संदेशियां ध्यान में जाती है तो सूक्ष्म वतन में फरिश्तों को ही देखते हैं, वो हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना, वो तो इस सृष्टि के हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है। सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, सूक्ष्म वतन में थोड़ी ऐसे विष्णु शेषनाग पर लेटा होगा फिर उसकी नाभि से ब्रह्मा निकला होगा कमल फूल पर, वो सूक्ष्म वतन की बातें नहीं है, ये यहाँ की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है। अब सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, जवाहरात आदि हो सकते हैं। विष्णु को देखा है, दिखाया, लेटा हुआ, इतने सारे जवाहरात पहने हुए, हाँ मालाएं बहुत दिखाई है ना, विष्णु को ऐसे थोड़ी दिखाया फरिश्ते के रूप में, वो जैसे मनुष्य रूप में ही दिखाया है। तो वहां तो ये जवाहरात आदि होती नहीं, हो नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मा को तो सफेद पोशधारी ब्राह्मण दिखाया है, ब्रह्मा को कोई गहने वहने नहीं दिखाए हैं, विष्णु को दिखाए हैं, उनको तो ब्रह्मा को सफेद पोशधारी दिखाया है, ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना, अब अंतिम जन्म तो गरीब होगा, पहला जन्म तो विष्णु का था, बहुत ही धनवान, और धनवान पे धीरे धीरे कैसे गरीब बनते हैं, तो बहुत गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े, बाबा जो कपड़े पहनते थे बिल्कुल साधारण कॉटन, कभी खादी के भी पहनते होंगे, तो खादी के कपड़े, वो बेचारे समझते नहीं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, वो लाइट का शरीर होता है, हड्डी मांस का नहीं होता। बाबा कहते वो समझते नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि नहीं होना चाहिए, वहां थोड़ी ऐसे श्रृंगार होगा, श्रृंगार तो सतयुग में होता है। तो सूक्ष्म वतन में तो श्रृंगार आदि नहीं होना चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है, तो बाबा उसका भी साक्षात्कार कराए फिर अर्थ समझाते हैं। इसलिए विष्णु को तो साक्षात्कार के रूप में दिखाते हैं, तो श्रृंगारा हुआ ही दिखाते हैं, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं, अब हनुमान जैसा तो कोई मनुष्य होता नहीं, फिर भी बाबा को कराना पड़ता है साक्षात्कार हनुमान का भी, भले वो ऐसे मनुष्य है नहीं, क्योंकि भक्तों की भावना उस अनुसार है, तो बाबा को भावना का भाड़ा देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो, अगर उनको बोलो कि ऐसे कोई है नहीं, तो बाबा कहते बिगड़ पड़ेंगे, कैसे नहीं है, वो तो हमारा इष्ट है, हाँ बिगड़ पड़ते हैं। अब देवियों आदि की भी कितनी पूजा करते हैं, फिर क्या करते हैं, देवियों को डुबो देते हैं। अब ये सब है डुबो देना, बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में कहां तक फंसे हुए, बाबा कहते हैं बिल्कुल गले तक, गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकल कैसे सकते हैं, निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई को कोई कोई फिर क्या करते, बाबा कहते औरों को निकालने निमित्त बने, खुद ही डूब जाते। कई बार ऐसे होता, अभी कोई पानी में गया और वो डूब रहा है, दूसरा उसको छलांग मार के उसको निकालने की कोशिश करेगा, उसको भी तैरना तो आता नहीं है, तो वो भी डूब जाएगा, वो भी डूब जाएगा, दोनों ही डूब जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक डूबन में फंसते, अर्थात अब खुद भी फिर डूबन में फंसते हैं, तो डूबन में फंसना अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं, उसको कहेंगे वो भी डूबन ही है ना, विकारों की डूबन, एक है भक्ति की डूबन, दूसरा है विकारों की डूबन, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। ये है सबसे बड़ी डूबन, दलदल विकार। सत्युग में ये बातें होती नहीं, न भक्ति की दुबन है न विकारों की दुबन है। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्युग में सत्संग होते ही नहीं है, क्योंकि सत्य बाप द्वारा सत्य ज्ञान मिला तो सच्चे सत्संग में बैठे हैं, सत्युग आ जाता है, सत्य देवता बन जाते हैं, फिर सत्संग की जरूरत ही नहीं है। सत्संग तो यहाँ भक्ति मार्ग में करते हैं, समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, भक्ति में तो यही कहते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते तो बाप बैठ समझाते हैं। कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सत्युग में होते हैं सब पुण्य आत्माएं, रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, पाप आत्मा भी तो नहीं है ना हम, पर पुण्य आत्मा भी कंप्लीट नहीं बनी है, तो संगम पर है। कलयुग और सत्युग दोनों को जानते हो, संगम की विशेषता क्या है, कलयुग को भी जानते हैं और सत्युग को भी जानते हैं, स्पीच में है। कलयुग और सत्युग दोनों को जानते हो, मूल बात है इस पार से उस पार जाने की, यहाँ बैठना नहीं है संगम पर, इस पार से उस पार जाना है, तो मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही है, हर एक को कर्म करना है, देवताएं भी कर्म करते हैं, मनुष्य भी कर्म करते हैं, कर्म तो मनुष्य करते ही है, फिर कोई कर्म अकर्म बन जाते हैं और कोई कर्म विकर्म बन जाते हैं। देवताओं के कर्म अकर्म बनते हैं ना, क्योंकि फिर वो हिसाब किताब नहीं बनता, जो संगम पर किया उसी वही चुप्त होता है, पर द्वापुर से विकर्म बनते हैं, फिर हिसाब किताब बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई कर्म विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं, सतयुग में विकर्म होते ही नहीं। क्यों क्यों विकर्म नहीं होते? क्योंकि वहां राम राज्य है, राम का राज्य है, वहां विकर्म नहीं होते। बाप से वरदान पाए हुए हैं देवताएं, इस समय वरदान जो भगवान देते हैं वो वरदान पाए हुए हैं, वो प्रारब्ध पा रहे हैं, तो वहां पर विकर्म नहीं होते। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण तो श्राप देता है। ये सुख और दुख का खेल है ना, दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई भी याद नहीं करते। वहां विकार होते ही नहीं। तो बच्चों को समझाया है, अभी और एक राज बाबा समझाते हैं, बच्चों को समझाया है कि यहाँ बाप सैपलिंग लगाते हैं। सैपलिंग तब लगती है जब पुराना झाड़ हो जाता है, तब उसकी कलम लगाते हैं। पुराने झाड़ में से ही वो कलम नई बनाते हैं। तो यहाँ पर बाबा सैपलिंग लगाते हैं, पुराने झाड़ से ही नया कलम। देवताएं यहाँ से ही बनते हैं। बाबा ने ये राज स्पष्ट किया है कि और धर्मों में सैपलिंग नहीं लगती है, सैपलिंग केवल यहाँ ही लगती है, क्योंकि पुराने से नए में ट्रांसफर होते हैं। और धर्म वालों की तो ऊपर से आत्माएं आती है, कोई पुराने से नई नहीं बनती है। तो ये बाबा ने अंतर बताया। तो बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं, ये सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है पुराने से नया। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अभी तो वन वो उत्सव मनाते हैं, कितने झाड़ लगाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं, क्योंकि प्रदूषण बहुत हो गया है तो पेड़ चाहिए। एक नया भी है ना प्रोग्राम बना है, एक पेड़ माँ के नाम, तो हर एक माँ के नाम पर कोई पेड़ लगाए तो ये प्रोग्राम करते जाते हैं। तो आगे ऐसे नहीं होता था, तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। तो ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण देना अच्छा हो जाता है कि वो भी जो सैपलिंग लगाते हैं, नए पेड़ लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो सैपलिंग है पुराने से। तो बाबा भी देखो सैपलिंग लगाते हैं, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, और कोई धर्म वाले सैपलिंग नहीं लगाते हैं। बहुत धर्म है पर देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम उल्टा सुलटा रख दिया है। क्या क्या नाम रखते हैं? जो देवता धर्म के हैं उनको फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, इसलिए हर धर्म वाले उसमें कई कट्टर होते हैं, इतने कट्टर होते हैं जो और धर्म का नाम भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो उसी धर्म के। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ न सके, मुक्ति तो हो न सके, जा वापस भी नहीं जा सकता है, दूसरे धर्म में जाएगा भी नहीं जो एकदम कट्टर होते हैं। हाँ, जो कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया तो वो फिर लौट कर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा, वो लौट कर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। भले इस जन्म में उसने क्रिश्चियन घर में जन्म लिया, उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे सिद्ध है ज्ञान योग अच्छा लगेगा, भले किसी और धर्म का है, ज्ञान योग अच्छा लगा तो क्या सिद्ध होता है कि कि इससे ये अपने धर्म का है, ये देवी देवता धर्म का, इसीलिए इसको ज्ञान अच्छा लगा है। देखो हमारे पास कितने बैठे हैं, वियतनाम के बैठे हैं, अब होंगे तो वो चाइनीज या उस रूप से, लेकिन सब बाबा के बच्चे। साउथ कोरिया में भी बाबा की बहुत अच्छी सेवा चलती है। साउथ कोरिया में तो जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब पर इंडियन नाम है, क्योंकि वो जो उनके जो नाम होते चाउ चू 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 पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, तो हम लोग तो वो बोल भी नहीं सकते, तो दादी ने उनका सबका नाम चेंज कर दिया सबको, किसी का नाम शांति, किसी का नाम प्रेम, किसका नाम दया, किसका नाम क्या। तो जब हम वहां गए तो हमने देखा अच्छा इतने सारे सब भारत के ही नाम है, तो कहा दादी ने, फिर कोई नए निकले थे, फिर हमको ही कहा कि आप भी इनको कोई नया नाम दो भारत का। तो देखो ऐसे तो बहुत खुश होते हैं, और फिर वो पुराना नाम तो भूल ही जाते हैं, वो जो नया नाम उनको मिला वही लेते हैं, है ना। वियतनाम वालों का ऐसे नहीं है, वियतनाम वालों को भी ऐसे कुछ करना चाहिए। खड़े हो जाओ वियतनाम वाले सारे, देखो कितने हैं, स्टैंड अप सब वियतनाम वाले, भाई खड़े हो जाओ, ऑल फ्रॉम वियतनाम प्लीज स्टैंड अप। देखो कितने हैं वियतनाम वाले, देखो हाँ सब हाथ पिलाओ। देखो बर्मा वाले भी आए हैं, परंतु वो तो बर्मा वाले उनके तो पूर्वज भारत से ही गए हैं, तो इसीलिए वो तो भारत के वाले की तरह। बर्मा वाले सब खड़े हो जाओ, बर्मा वाले देखो ये सब बर्मा से आए हैं, देखो कितने हैं। इन सब की ट्रेनिंग हो गई, तो इन सब की ट्रेनिंग हो गई तो हमने एक बार क्लास में कह दिया कि वहां उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, वहां इतनी सारी कुमारियां निकली है। तो किसी ने मुझे फोन किया वहां से, कुमारियों को हमारे पास भेजो ना भारत में, हमको भारत में चाहिए कुमारियां, वहां इतनी कुमारियां निकली है। और बहुत प्यार से बाबा की सेवा करती है, पर गुप्त करना पड़ता क्योंकि बर्मा है ना दूसरा देश है, वहां की भाषा भी अलग है वैसे और धर्म भी अलग है। लेकिन ये बाबा की बच्चियों ने अपने हाथ से रिट्रीट सेंटर बनाया है वहां, बहुत सुंदर बनाया है। हम दो बार गए हैं बर्मा, है ना ऐसे। हाँ तो बाबा कहते हैं, हाँ तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि अपने धर्म के हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की और समझाने की, धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनाना है। बाबा ये भी कहते हैं जब ज्ञान सुनाओ तो धारणा युक्त होकर के सुनाओ, केवल किताब नहीं सुनाना है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं, कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं, यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता है। कितना ज्ञान बाबा ने दिया है। गीता तो बहुत छोटी बनाते हैं, 18 अध्याय, इतनी छोटी गीता बनाकर फिर गले में भी पहनते हैं, बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है, कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात, इतनी छोटी गीता बनाते, बाबा कहते ज्ञान है तो एक सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना, एक सेकंड का ज्ञान है। बाबा का बने विश्व का मालिक हो गए, हो गया ज्ञान। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, बच्चे कहते हैं ऐसे भी लिखना शुरू करेंगे, एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे, बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है, और खंडों का नाम ही नहीं है सतयुग में, नाम निशान खत्म हो जाता है, गुम हो जाता है, कोई को मालूम ही नहीं है कि कोई और भी खंड होते हैं सतयुग में, एक ही बस भारत, और भी खंड है ये पता ही नहीं वहां। अगर बाबा कहते अगर वहां होते कोई और खंड होते तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, कुछ भी नहीं है वहां, तो होते ही नहीं, इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। और जितने भी देश है उनका वो बताते हैं कब शुरू हुए। अमेरिका को तो केवल 500-600 साल ही हुआ है, तो देखो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके पहले की उनकी है ही नहीं, तो वहां ये होते ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। तो बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। ये तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वो महिमा फिर दूसरे को नहीं दे सकते। भगवान की महिमा किसी मनुष्य को तब चलो उनकी फिर महिमा हो। बाबा ने हमको आप समान बनाया है तो हम मास्टर ज्ञान सागर मास्टर शांति सागर बनते हैं। मास्टर बाप भगवान तो नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं अगर एक की महिमा की तो वो महिमा फिर दूसरे की नहीं हो सकती है, फिर वो आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पति पावन ठहरे मास्टर, सब में मास्टर पति पावन ठहरे। सत नाम लिखते हैं ना सत नाम, तो पति पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो या शिव वंशी कहो, शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव वंशी तो सब है, सब शिव के बच्चे हैं, तो शिव वंशी तो सब है। बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होती है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां नहीं होती है, संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। नई सृष्टि रचने पहले ब्रह्मा रचते हैं, फिर उनसे पहली रचना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो कोई भी एतराज अगर उठाते हैं इस बात में तो उनको बोलो ये प्रजा पिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा फिर विष्णु किसकी नाभि से निकला, उसमें फिर एरो का निशान दे देना चाहिए कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा ही फिर विष्णु बना, तो वो डबल एरो अपोजिट कि वो बना वो बना। तो उसने ना एक फिल्म वीडियो बनाई है विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु, तो दोनों कैसे एक दो में बनते हैं। अच्छा विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला, तो उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओतप्रोत है। ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा, ये उनसे वो उनसे पैदा हुए हैं। अब इनको लगता है एक सेकंड, किनको लगता है एक सेकंड, ब्रह्मा को विष्णु बनने में लगता है एक सेकंड, बस साक्षात्कार हो गया नशा चढ़ गया बाबा को, तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक सेकंड और उनको विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 साल। ये वंडरफुल बातें हैं ना। तो बैठ समझाएंगे तो बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर ये बनाता हूँ। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उनको को बैठो तो आपको समझाएं इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वालों के लिए क्या कहेंगे। अगर नहीं कोई समझ रहा है तो उनके लिए क्या कहेंगे, ये हमारे कुल का नहीं है इसलिए समझ नहीं रहा है बिचारा। उनको फिर बाबा कहते बिचारा, अगर नहीं समझते हैं बिचारा भल वहां आएगा, अब समझता नहीं है लेकिन ज्ञान का बीज तो पड़ा ना। तो बाबा कहते वो बिचारा भले वहां आएगा सत्य त्रेता में आएगा या त्रेता में भी आएगा, परंतु बेचारा किनका, क्योंकि प्रजा में जाएगा, राजा ही तो मिलेगी नहीं उसको, क्योंकि यहां पूरा समझा ही नहीं, परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बिचारे हैं इस समय, बाबा कहते हैं सारी दुनिया बिचारे है। हाँ, इंग्लिश में तो बहुत सहज कहते पुअर थिंग पुअर थिंग पुअर थिंग, बिचारे। हाँ, कहते ना हिंदी में बिचारे, तो हर बात में बिचारे कहते हैं, जो नहीं समझते हैं, जो लाचार है तो बिचारे हो गए। तो गरीब को बिचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या? कौन सी, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक कोई कम है क्या? अब युगल तो है नहीं, अब ब्रह्मा देखो बाबा ने क्या राज समझाया है, ये टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, अब प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती ये चार भुजाएं दिखाते हैं, पर वो दो बेटे, दो भुजाएं किसकी है? ब्रह्मा को भी चार भुजा दिखाते हैं, पर वो दो भुजाएं किसकी है? बाबा कहते हैं वो दो भुजा बेटी की हो जाती है, सरस्वती तो बेटी है ना ब्रह्मा की, तो वो दो भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं ये मम्मा बाबा, युगल तो है नहीं, वो तो अलौकिक बेटी है। युगल तो वास्तव में किसका कहेंगे? युगल तो वास्तव में बस केवल विष्णु का ही कहेंगे, आज बाबा ने कहा शंकर का भी नहीं कहेंगे, कोई एक पार्वती थोड़ी है शंकर को, इसलिए शिव शंकर मिला दिया है और हम सब पार्वतियां हैं। हाँ, तो जब समर्पण समारोह करते हैं तो क्या कहते हैं, सब पार्वतियों का विवाह एक शिव के साथ, तो पार्वती एक थोड़ी होगी, कितनी पार्वतियां हैं। तो देखो बाबा ने ये राज खोला है, तो दो भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है, न शंकर है न ब्रह्मा है, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, वो युगल नहीं है, और शंकर को भी कोई युगल नहीं है, क्योंकि हम सब पार्वतियां हो गई बाबा की, तो शंकर को भी कोई युगल नहीं है, इसीलिए शिव शंकर कह देते हैं, वो एक मान बना लिया शिव शंकर। अब शंकर क्या करते हैं? शंकर दिखाते हैं विनाश, बाबा कहते हैं शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है, शंकर थोड़ी ऐसे विनाश करेगा। बाप कैसे बैठ बच्चों की मौत कराएगा? सोचो तो सही, भगवान अपने बच्चों की मौत कराए, विनाश कैसे होगा? ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाते हैं, मौत नहीं कराते, वो वापिस शांति धाम ले जाते हैं, बिगर मेहनत शांति धाम चले जाती है आत्माएं। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं, तुमको भी पहले गति में फिर सदगति में जाना है। ये बातें समझने की है, इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं है। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर के समझेंगे। कल भी बाबा ने कहा उनके पीछे नहीं पड़ो, टिक 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 करो, हाँ नहीं समझना नहीं समझे उनका, वो हमारे कुल का नहीं होगा। सबको बाप का परिचय तो दो, बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है। हाँ, बाबा को, बाबा ने क्या हुक्म किया हम सबको? यहाँ तो सिर्फ हुक्म है कि सबको आप, सबको बाप का परिचय दो, ये भगवान का हुक्म है हमें। ये है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं, इसको दुख धाम कहा जाता है। सत्युग है सुख धाम, दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है ये भी तुम समझते हो। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। अब ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा, कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूं इनसे, तब इनका नाम बदला। इसलिए प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूं, फट से संन्यास कर देते हैं। बाबा ने फट से संन्यास कर दिया, क्योंकि बाप को इनसे सर्विस करानी थी, वही कराते हैं। इनके पीछे बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा, यज्ञ में नाम रखा, क्योंकि बहुत निकले ब्रह्मा बाबा के पीछे। वो लोग फिर बेरे की पिंगरे बैठ दिखाते हैं। अब ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पिंगरे कैसे हो सकते हैं? उस समय छोटे छोटे आए ना, तो वास्तव में बिल्ली के पिंगरे नहीं, पर छोटे छोटे आए यज्ञ में, तो बिल्ली के पिंगरे हो कैसे सकते हैं? तो बाबा कहते हैं बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बिल्ली क्यों बैठ, बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी, ये तो बच्चियां आई जिन्होंने को ज्ञान सुनाया। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं, कोई बात किसको समझ में न आए तो उनको बोलो। क्या बोलो? जब तक अलफ को नहीं समझा है तब तक और कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और फिर लिखो, लिखो उसको, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देती है, तो मुख्य बात है ये बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही रहेंगे। अलफ नहीं समझा है तो बे को कुछ भी नहीं समझेंगे। भगवान बादशाही देते तो समझेंगे ही नहीं जब तक अलफ को नहीं समझा है। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे, ऐसे क्यों, ये क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले बाप का परिचय दो। हाँ, बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। पहले खुद धारण हो फिर दूसरों को सुनाना है। दूसरा, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय होगा तो पता चले, तो उससे ही नशा आएगा। तो अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। निश्चय का प्रमाण है नशा, नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती है। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती है। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो। कौन कौन से नशे में रहो? सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में और भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्म स्थिति में स्थित हो, इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करणहार है, आप देही करावनहार हो, इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। आत्मा करावनहार और ये शरीर करणहार, इस स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसे कोई फॉलो फादर भी कहा जाता है, शिव बाबा भी ऐसे ही करते हैं। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। कितने वरदान मिल गए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आप सबको आज का प्रोग्राम देंगे।